आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा पन्ना नंबर 55। गरीब अर्स कुरश पर अलह तखत है खालिक बिन नहीं खाली। वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहेब के अब्दाली। पाव अर्थ नबी मोहम्मद ता आदरणीय महापुरुष सन जो परमात्मा संदेश वाहक सन। ऐसे ऐसे 180,000 पैगंबर मुसलमान धर्म विच यानी बाबा आदम तो लैके मोहम्मद तक मन्ने गए हन। ओ सब पाक यानी पवित्र व्यक्ति सन जिन्ना ने कदी किसे पशु पंछी उत्ते करद जानी तलवार नहीं चलाई। ओ ता परमात्मा तो डरन वाले सन परमात्मा दे किरपा पातर सन। बाद विच कुछ मुल्ला काजिया ने मांस खाण दी परंपरा शुरू कर दिती जो अग्गे चल के धार्मिकता दा अपवाद यानी विगड़िया रूप बन गई। उसी आधार ते सारे मुसलमान भाई पाप नू खा रहे हन। फिर परमित मुसलमाना ने तमाखू दा सेवन यानी खाना हुक्का बना के पीना आरंभ कर दिता। भोले हिंदू धर्म दे व्यक्तिया ने उना दी चाल नहीं समझी। उना दे कहने नाल तंबाकू दा सेवन जोर शोर नाल शुरू कर दिता। वर्तमान विच ता इह पंचायत दा प्याला बन गया है जो भारी पुल है अज्ञानता दा पर्दा है। इसे पुल के भी सेवन नहीं करना चाहिदा है। संत गरीब दास जी ने फिर दस्या है कि हे भगत हरलाल जी होर सुन तमाखू सेवन दे पाप। बाणी संख्या 1। गरीब पर दोबारा स्त्री का खोले सतर जन्म अंधा हो डोले। बाणी संख्या 2। मदिरा पीवे कड़वा पानी सतर जन्म शवान दे जानी। बाणी संख्या 3। मांस आहारी मनवा परतख राक्षस जान मुख देखो ना तास दा वो फिरे 84 खान। बाणी संख्या 4। सुरापान मद मासा आहारी गमन करे पोगे पर नारी। बाणी संख्या 5। सतर जन्म कटत है शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। बाणी संख्या 6। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 वार एक चिलम हुक्का परे डूबे काली तार। बाणी संख्या 7। हुक्का हरदम पीवते लाल मिलावे तूर इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सुअर। उपरोक्त बाणिया दा पाव अर्थ बाणी संख्या 1 विच कहा है कि जो व्यक्ति होर स्त्री नाल नाजेज संबंध बनाउंदा है उस पाप दे कारण ओ 70 जन्म अन्ने दे प्राप्त करदा है। अन्ना गदा गदी अन्ना बैल अन्ना मनुख जा अन्नी स्त्री दे लगातार 70 जन्म विच कष्ट भोगदा है। बाणी संख्या 2। कड़वी शराब रूपी पानी जो पींदा है ओ उस पाप दे कारण 70 जन्म तक कुत्ते दे जन्म प्राप्त करके कष्ट भोगदा है। गंदी नालिया दा पानी पींदा है रोटी ना मिलनते गू यानी टट्टी खांदा है। बाणी संख्या 3। जो व्यक्ति मांस खांदे हन ओ ता स्पष्ट राक्षसे हन। उहना दा ता मुख भी नहीं देखना चाहिदा है यानी उहना दे नाल रहन नाल होर भी मांस खान दा आदि हो सकदा है इसलिए उहना तो बचो। ओ ता 84 लख जूनियान विच पटकेगा। बाणी संख्या 4-5। सुरा यानी शराब पान यानी पीण वाले अते पर स्त्री नू भोगण वाले मांस खाण वालियां नू होर पाप कर्म भी भोगना हुंदा है। आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा पन्ना नंबर 56। उहना दे 70 जन्म तक मानव जा बकरा बकरी पैंस जा मुर्गे आदि दे जीवना विच सिर कटदे हन। इस गल नू मैं परमात्मा नू साक्षी रख के कह रहा हां सच मनना। बाणी संख्या 6। एक चिलम भर के हुक्का पीण वाले नू देण नाल भरन वाले नू जो पाप लगदा है ओ सुनो एक वार पराई स्त्री गमन करन वाला एक वार शराब पीण वाला एक वार मांस खाण वाला पाप दे कारण उपरोक्त कष्ट भोगदा है। 100 स्त्रियां नाल भोग करे अते 100 वार शराब पीवे उसनू जो पाप लगदा है ओ पाप एक चिलम भर के हुक्का पीण वाले नू लगदा है। विचार करो तमाखू सेवन यानी हुक्के विच बीड़ी सिगरेट विच पीण वाले खाण वाले करण वाले नू किन्ना पाप लगेगा इसलिए उपरोक्त सर्व पदार्था दा सेवन कदी ना करो। बाणी संख्या 7। समाज दे व्यक्तियां नू देख के कुछ व्यक्ति हुक्का जा होर नशीलिया वस्तुआ सेवन करन लग जांदे हन। सत्संग सुन के बुराई त्याग दिंदे हन तां ओह जीव पिछले जन्म विच वी मनुख सन। उहनां दे अंदर नशे ही गूढ़ी लत नहीं बनदी परंतु जो वार वार सत्संग सुन के भी तंबाकू आदि नशे दा त्याग नहीं कर पाउंदे ओ पिछले जन्म विच सूर दे शरीर विच सन। सूर दे शरीर विच बदबू बैड समैल सुंघण नाल तंबाकू दी बदबू पीण सुंघण दी गूढ़ी आदत हुंदी है। ओ शीकर हुक्का होर नशा नहीं त्याग पाउंदे ओ अपने अनमोल मानव शरीर रूपी लाल नू मिट्टी विच मिला रहे हन। उहनां नू ज्यादा सत्संग सुनन दी राय दित्ती जांदी है। निराश ना होवो सच्चे मन नाल परमात्मा कबीर जी तो नशा छुड़वाउन दी पुकार प्रार्थना करन नाल सब नशा छुट जांदा है। तम्बाकू दे विषय विच होर विचार, तम्बाकू जानी हुक्का पीण वालियां दी स्थिति दसी है। संत गरीबदास जी दे ग्रंथ विच अथ तम्बाकू दी बैंत नाम अध्याय विच पित बाई खांसी निवासी निवास कफ दल कलेजा लिया है गिरास। काला तम्बाकू अरु गोरा पिवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। वाजे नै गुड़ गुड़ अरु हुक्के हजूम, कोरे कबुदी बीसा है ना सूम। बांकी पगड़ी अरु बांकी ही नै खुद डूबे अरु डबोए है कै। गुटकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़कर एक बैठेगा दूर। पीवे तम्बाकू पड़े करम मार, अमली के मुख में मूतर की तार। कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही ले प्यारे कड़वा ही पेश। कामी क्रोधी तू लोभी लबूट, बचन मान मेरा तू माना कूंट। हुक्का हरामी गुलामी गुलाम, तनी के सरे में ना पहुंचे अलाम। पामर परम ताम जाते ना कोई, चूठे अमल पर दई खोई। मुर्दा मजावर हरामी हराम, पीवे तम्बाकू सो इंद्री के गुलाम। अज्ञान नींद ना सो उठ जाग, पीवे तम्बाकू गए फुटी पाग। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 57। पांग तम्बाकू पीवे ही सुरा पान से हेत, गोस्त मिट्टी खाए कर जंगली बने परेत। गरीब पान तम्बाकू चाबही, सांस नाक में देत। सो तो अकारत गए ज्यून पड़ पूंजे कारेत। पांग तम्बाकू पीवही गोस्त गला कबाब, मोर मिर्ग को पखत है देंगे कहा जवाब। पांग तम्बाकू पीवते चिस्म्यो नाले तमाम, साहिब तेरी साहिबी जाने कहा गुलाम। गौ अपनी अम्मा है इस पर छुरी ना बहाए, गरीब दास की दूध को सब ही आत्म खाए। भाव अर्थ उपरोक्त बाणिया दा भाव अर्थ है कि मानव शरीर नू आक्सीजन दी जरूरत है। उस दे स्थान ते तम्बाकू दा तुआ यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करदा है, ता उहना नू खांसी रोग हो जांदा है। पित्त ते बाई यानी बाए दा रोग हो जांदा है। हुक्का पीण वाले दा बैठन दा स्टाइल दस्या है कि हुक्का पीण वाले एक दो ता हुक्के दे नेड़े बैठणगे, एक कुछ दूरी उत्ते बैठेगा ते कहेगा कि सरका दे थोड़ा जिहा। दूसरे उस दे वल हुक्का देंगे, फिर नै यानी नली जिस तो तूना खिचदे हन गुरड़ गुरड़ वज्जेगी। आप ता हुक्का पी के डुब्बे हन अते छोटे बच्चे भी उहना नू देख के ओही पाप करके नरक दी काली तार विच डुब्बणगे। जो तम्बाकू पींदे हन उहना दे ता पाग फुटे ही हन, होर नू तम्बाकू पीण दे लई उत्प्रेरक बना के डुब्बदे हन। उपरोक्त बुराई करन वाले ता अपना जीवन इस तरह बेअर्थ कर जांदे हन जिवे पड़पूंजा बालू रेत नू अग नाल खूब गर्म करके चने पुंदा है, फिर सारा कम करके रेत नू गर्म करके गली विच सुट दिंदा है। इस प्रकार जो मानव उपरोक्त बुराई करदा है ओ भी अपने मानव जीवन नू इस प्रकार बेअर्थ करके चलिया जांदा है। जो व्यक्ति उपरोक्त पाप होर प्राणिया दे जीवन रूपी गली विच सुट देणगे यानी बोलन योग नहीं रहणगे, फिर कहा है कि गा अपनी माता दे तुल है। जिस दा सब धर्म जाति वाले दुध की पींदे खांदे हन, इस लई गानू ना मारो। विशा तम्बाकू दा चल रहा है, भगती मार्ग विच तम्बाकू सब तो ज्यादा रुकावट करदा है। जिवे अपने दोनों नक्का दे मध विच एक तीसरा रस्ता है, जो तम्बाकू दा तुआ नासा तो छड्डदे हन ओ उस रस्ते नू बंद कर दिंदा है। ओही रस्ता उपर नू त्रिकुटी दे वल जांदा है जिथे परमात्मा दा निवास है। जिस रस्ते तो असी परमात्मा नू मिलना है उसे नू तम्बाकू दा तुआ बंद कर दिंदा है। हुक्का पीण वालियां नू देखिया है, प्रतिदिन हुक्के दी नै यानी नली विच लोहे दी गज यानी एक पतला जिहा सरिया कुमाउंदे हन जिस विच तुआ जम्या होया मैल निकलदा है। ओ नै रुक जांदी है। मानव जीवन परमात्मा प्राप्ति दे लई मिलिया है। परमात्मा नू प्राप्त करन वाले मार्ग नू तम्बाकू दा तुआ बंद कर दिंदा है। इस लई भी तम्बाकू भगत दे लई महान शत्रु है। वैसे भी हुक्का पीण वाले भी मनदे हन कि तम्बाकू चंगी चीज नहीं है। जद कोई छोटा बच्चा अपने दादा ताऊ पिता चाचा नू हुक्का पींदे देखदा है ता ओ नकल करदा है, हुक्के नू पीण लगदा है ता वड्डे व्यक्ति जो खुद हुक्का पींदे हन उस बच्चे नू धमकाउंदे हन कि खबरदार अगर हुक्का पीता ता ओ चंगा नहीं है। जेकर आप जी इस नू चंगा पदार्थ मनदे हो ता बच्चियां नू भी पीण देओ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 58। आप मना करदे हो अते मनदे हो कि ए चंगा नहीं है हानिकारक है, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੌ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੂਆ ਪਿਲਾ ਕੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀ ਲੈ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਚੋਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਹੁੱਕਾ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਖੂ ਪੀਣਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬੀਲੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਪ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਮਾਖੂ ਪੀਣਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰੰਪਰਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਪ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਹਰਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੁੱਕਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਚਿਲਮ ਫੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਨਾਮ ਦੇਖਿਆ ਦਵਾਈ। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਮਾਖੂ ਤੋਂ ਗਧੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਛੁੜਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੱਸ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਾਲਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਘੋੜਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਠੀ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਪਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਿੱਠ ਬਲ ਡਿੱਗੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਰੱਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ ਕੀ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਘੋੜਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਰ ਬੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਮਾਖੂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 59। ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤਮਾਖੂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤਮਾਖੂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ, ਤਮਾਖੂ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪਰ ਲੈ ਨਾ ਹੁਟਕੀ। ਜਦ ਹੋਟਕੀ ਯਾਨੀ ਛੋਟਾ ਹੁੱਕਾ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਚਿਲਮ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫੁੱਟ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਹੋਟਕੀ ਦੀ ਚਿਲਮ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਹੋਕੀ ਸੀ ਸਭ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਚਿਲਮ ਵੀ ਫੁੱਟ ਗਈ। ਰਖਵਾਲੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਹੁੱਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਚਿਲਮ ਫੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਡਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਖਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਹੁੱਕਾ ਯਾਨੀ ਤਮਾਖੂ ਸੇਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਲਖੇੜੀ। ਹੁੱਕਾ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੜਵਾ ਹੈ, ਤਮਾਖੂ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਲੈ ਚਿਲਮ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕ ਕੜਵਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰੀਤੋ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਯਮ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਕੜਵਾ ਤਮਾਖੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਅਧਿਕ ਕੜਵਾ ਤਮਾਖੂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਪਿਆਰੇ ਕੜਵਾ ਮੂਤ ਪੀ ਲੈ। ਮੂਤਰ ਦੀ ਧਾਰ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਵਾਈ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਬੇਨਤੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਬੁਰਾਈ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼। ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਹੁੱਕਾ, ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ 4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ, 1 ਫੇਫੜੇ, 2 ਜਿਗਰ ਯਾਨੀ ਲੀਵਰ, 3 ਗੁਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿਡਨੀ, 4 ਹਿਰਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਫਾ ਯਾਨੀ ਚਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਕਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ। ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਲਰੀ ਪੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 60। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਰਦਾ ਆਪਣੀ 3 ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜੋ ਨਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਉਸੀ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਕੀ ਠੌੜ ਬਿਠੌੜਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਬਦੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਰਧ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰ ਬਦੂ ਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਜੇਠ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਾਭ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਓ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਵਚਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੋਨੋਂ ਨਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਕਸ਼ਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਦਾਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਧਾ, ਕੁੱਤਾ, ਸੂਰ, ਬੈਲ ਬਣ ਕੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਗੰਦ ਖਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਵ ਯਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਚਾਹੋ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਫਲ ਤੇ ਮੇਵਾ ਯਾਨੀ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾ ਦਾਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗਧਾ, ਬੈਲ, ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਾ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ, ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਆਲ ਆਊਟ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਖੋਜ ਲਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਪਸ਼ੂ ਬਣੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਰ ਸੇਤੀ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂਆ ਕੀਜੈ, ਗਧਾ ਬੈਲ ਬਣਾਈ, 56 ਭੋਗ ਕਹਾ ਮਨ ਪੌਰੇ, ਕੁਰੜੀ ਚਰਨੇ ਜਾਈ। ਭਾਵਰਥ, ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤੀਹੀਣ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਗਧੇ, ਬੈਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ੂਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 61। ਫਿਰ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਧਾ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰੜੀ ਯਾਨੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਖਾਏਗਾ, ਬੈਲ ਬਣ ਕੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, रस्सी नाल बन्या रहेगा, ना प्यास लगन उत्ते पानी पी सकेगा, ना भुख लगन उत्ते खाना खा सकेगा। मक्खी मच्छर तो बचन दे लई इक पूछ होएगी, उसनू कूलर समझना, पखा जा मच्छरदानी समझना। जिन्ना प्राणियां दे अधिक पाप कर्म हुंदे हन, पशु जीवन विच उहना दी पूछ भी कट्टी जांदी है। एक डेढ़ फुट दा डंडा बाकी बचदा है, उसनू कुमौंदा रहिंदा है। एक बैल दे पिछले पैर दे खुर विच लगभग डेढ़ इंच वड्डी किल लग गई। चलन तो होर ज्यादा अंदर चली गई, बैल पैर तो लंघ करन लगा। हाली नू लगा कि झटका लग गया है, नस उत्ते नस चढ़ गई होएगी। चलन नाल ठीक हो जाएगा, कई वार अजिहा हुंदा है कि नस उत्ते नस चढ़ जांदी है, ता बैल चलदे चलदे ठीक हो जांदा सी। परंतु हुण दी वार अजिहा नहीं होया, सारा दिन बैल हल विच चलिया। घर तक आया ता पैर नू मुश्किल नाल धरती उत्ते रख पा रहा सी। हौली हौली चल पा रहा सी, घर आउंदे ही बैठ गया। चारा भी नहीं चरिया, अखा तो हंजू निकल रहे सन, क्योंकि दर्द ज्यादा सी। सवेरे बैल उठिया ही नहीं, लेट गया पैर उत्ते, सोज ज्यादा सी। पिंड तो पशुआ दा डाक्टर बुलाया, पुराने समय दी गल है। उस समय अजिहा ही इलाज हुंदा सी, डाक्टर ने देख के दस्या कि इस दे कुटने विच बाह आ गया है। पुराने गुड़ नू कुट के नरम करके पट्टी बन देवो, ठीक हो जाएगा। किल लगी खुर विच यानी पैर दे नीचे वाले हिस्से विच उपचार हो रहा सी कुटने दा। लगभग एक महीने अजिहा चलिया। एक दिन घर दे आदमी ने देखिया कि बैल दे पैर दे तले यानी खुर दे विच तो मवाद निकल रहा है। उसनू साफ कीता ता पाया कि किल लगी है। किसे औजार नाल किल कड्डी, फिर एक हफ्ते विच बैल ठीक हो गया। पेट भर चारा खादा पानी पीता। विचार करो, जद ए प्राणी मानव शरीर विच सी, ता इसने सुपने विच भी नहीं सोचिया एक दिन मैं बैल बन जाऊंगा। हुण बोल के भी नहीं दस्या जा रहा सी कि दर्द किथे है। कबीर जी कहंदे हन कि कबीर, जेहवा तो वोहे पली जो रटे हरी नाम, ना तो काट फेंक दियो मुख में पलो ना चाम। भाव अर्थ, जिवे जीव शरीर दा बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जेकर परमात्मा दा गुणगान ते नाम जाप दे लई प्रयोग नहीं कीता जांदा है, ता बेअर्थ है, क्योंकि इस जुबान तो कोई किसे नू कुबोल बोल के पाप करदा है। बलवान व्यक्ति निर्बल नू गलत गल कह दिंदा है, जिस तो उसकी आत्मा रोंदी है, बद दुआ दिंदी है। फिर किसे दी निंदा करके, किसे दी झूठी गवाही दे के, किसे नू वपार विच झूठ बोल के ठग के अनेका प्रकार दे पाप मानव अपनी जीब नाल करदा है। परमेश्वर कबीर जी ने दस्या है कि जेकर जीब दा सदोपयोग नहीं करदा है, भाव शुभ बचन शीतल बाणी परमात्मा दा गुणगान भाव चर्चा करना। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 62। तार्मिक सदग्रंथा दा पाठ पठन ते भगवान दे नाम उत्ते जाप सिमरन जीब नाल नहीं कर रहा है, ता इसनू कटके सुट दियो। कोरे पाप इकट्ठे कर रहा है, यानी जीब कट्टण नू कहना, ता मातर उदाहरण है जो सतर्क करन नू है। किते जीब कटके ना सुट देना, अपने शुभ कर्म शुभ बचन शुरू करना। जेकर राम नाम ते गुणगान नहीं कर रहा है, ता पवित्र मुख विच इस जीब दे चम नू रखना चंगा नहीं है। मानव शरीरतारी प्राणी नू वर्तमान विच यानी सन 1970 तो विशेष सुविधावां प्राप्त हन, जिस कारण दिनों दिन परमात्मा तो दूर हुंदा जा रहा है। उन्हीं ही गति नाल दुख मानव दे निकट आ रहे हन। वित्ती स्थिति विच सुधार है, परंतु मानसिक शांति समाप्त है। नशा इस दा मुख कारण है। एक पिता नौकरी उत्ते गया है। बच्चिया दी आशा हुंदी है कि पिता जी आउणगे, कुछ जरूरी वस्तुआं लियाउणगे। पिता जी आउंदे हन ता छोटे छोटे बच्चे दौड़ के लिपटदे हन, प्यार पाउंदे हन। जिन्ना बच्चिया दा पिता नशा करदा है, उहना दे घर विच कलह दा होना सुभाविक है। बच्चे पैपीत रहिंदे हन, उहना दा मानसिक विकास शरीरक विकास दोनों ही नहीं हो पाउंदे। ओह घर नरक समान हो जांदा है। अज जो शराब पी के मस्त हन, उहना दी इज्जत समाज विच नहीं हुंदी। अगले जन्म विच ओह कुत्ता बनेगा, टट्टी खाएगा, गंदी नाली दा पानी पिएगा, फिर पशु पंछी बन के कष्ट उठाएगा। इसलिए सब नशा ते वस्तुआ त्याग के इंसान दा जीवन जिओंगे। सभ्यक समाज नू वी चैन नाल जिओन दिओ। एक शराबी अनेका व्यक्तिया दिया आत्मावा दुखाउंदा है। पत्नी दी पति दे माता पिता भाई पैणा दी अपने माता पिता बच्चिया दी भाई आदि दी केवल एक घंटे दे नशे ने धन दा नाश इज्जत दा नाश घर दे पूरे परिवार दी शांति दा नाश कर दिता। कि ओ व्यक्ति भविख विच सुखी हो सकदा है? कदी नहीं। नरक जेहा जीवन जीवेगा। इस लई विचार करना चाहिदा है, बुराई तुरंत त्याग देनी चाहिदी है। प्रश्न, किसने देखिया है कि अगले जन्म विच की हुंदा है? उत्तर, उदाहरण दे लई एक समय एक कन्ना व्यक्ति जंगल दे वल जा रहा सी। अगे एक सज्जन व्यक्ति खड़ा सी, उसने कहा कि हे सूरदास जी इधर मत जाओ, ए रस्ता भयानक जंगल विच जांदा है, खूंखार शेर चीते आदि आदि जानवर रहंदे हन, आप वापस जाओ, जेकर अन्ने दा नशा नहीं कर रख्या होएगा ता तुरंत मुड़ जाएगा, जेकर नशे विच है ता कहेगा कि किसने देखिया है कि जंगल विच भयानक शेर चीते सप आदि अजगर रहंदे हन, अते ए कह के अपने पथ उत्ते वद जांदा है। विचार करो, अन्ने नू दिखाई नहीं दिंदा अते अखा वालिया दी गल उत्ते विश्वास नहीं करदा, ता उसनू केहड़े तरीके नाल समझाया जाए? जेकर नहीं मनदा है ता उसदी ओही दशा होएगी जो अखा वाला दस रहा सी, शेर मार देवेगा। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 63। इसे प्रकार संतजन अखा यानी ज्ञान नेतर वाले हन, उहना ने सानू दस्या है जो उपर वर्णन किया गया है। असी ज्ञानहीन यानी अन्ने हा, उहना ने संता दी सिख्या उत्ते विश्वास करके रस्ता नहीं बदलांगे ताही उही होएगा जो उपर दस्या गया है। नर से फिर पीछे तू पशुवा की जय, गदा बैल बनाई, छप्पन भोग कहा मन पौरे कुरड़ी चरने जाई। कुछ व्यक्ति ता ए तक कह दिंदे हन कि देखिया जाएगा जो होएगा, उहना नू बेनती है कि गदा बनन दे पिछो आप की देखोगे, फिर ता कम्यार देखेगा। इस प्रकार दे प्रवचन सत्संग विच जरूर सुनाए जांदे हन। ए शराबी भी सत्संग विच आ बैठा पर घर कोई नहीं सी, ताला लगा सी, कुछ देर बाद नशा उतर गया अते सारा सत्संग सुनना पिया। उस दिन दे पिछो उस व्यक्ति ने कदी शराब नहीं पीती अते कोई नशा नहीं कीता, दीख्या प्राप्त कीती, पूरे परिवार नू दीख्या प्राप्त करवाई। असी यानी लेखक ते सत्संग विच गए कुछ भगत सवेरे पिंड दे बाहर घूमण दे लई गए, ता रस्ते विच उस व्यक्ति यानी हवाई अड्डे वाले दा घर सी, गली विच उसदी माता जी खड़ी सी। उसने कहा कि महाराज जी चाह पी के जाना, पिंड दे भगत ने दस्या कि इहना दे घर जरूर चलो, उजड़िया पिया है ए परिवार, साधु संता दे चरण पैण नाल घर पवित्र हो जांदा है। असी सब उहना दे घर चले गए, असी कुल 5 जाने सी। चारपाई विहड़े विच पई सी, मई दा महीना सी, रुख दी छां सी। उस दी माता जी ने अपनी पुत्रबदू नू कहा कि बेटी चाह बना, उस बेटी ने चुल्ले विच अग जला के डेगची विच पानी पा के चाह बनाउणा शुरू कर दिता। अद्धे घंटे बाद असी कहा कि चाह जल्दी लियाओ, असी घूमण जाना है, फिर किसे होर पिंड विच सत्संग दे लई जाना है। परंतु फिर भी वो बेटी डेगची दे नीचे अग जलाए जा रही सी। दुबारा कहा ता वो रोन लग गई। पिंड दा भगत उठ के गया ता पता चल्या कि घर विच ना चीनी है, ना चाह पत्ती अते ना ही दुध है। उस व्यक्ति दी माता जी भी रोन लगी, कहा कि उजड़े पए हा, महाराज बचा सको ता बचा लो। ओ व्यक्ति दिख्या लैके वकत नाल अपनी ड्यूटी उत्ते चला गया सी। कुछ दिन पिछो असी दिल्ली विच ही पंजाब खोड़ पिंड विच सत्संग कर रहे सी। उत्थे ओ व्यक्ति अपनी माता ते पत्नी ते तीनों बेटियां नू कार विच बैठ के सत्संग विच ले आया। पहला एक टुट्टी जेही मोटरसाइकल सी, सब बच्चिया दे सुंदर वस्त्र पहन रखे सन। कह रहे सन कि पिता जी हुण मम्मी दे नाल कदी नहीं लड़दे, सब तनखा दादी जी नू दिंदे हन, असी ता स्वर्ग विच रहन लगे। दादी जी बोली कि उस दिन आप जी दे ऐसे दर्शन होए कि असी ता उजड़े वस गए। मैं कहा कि माई तेरा बेटा बुरा नहीं सी, इसने ये अच्छे विचार कदी सुने ही नहीं सन, जेकर पहला ये विचार सुनन नू मिल जांदे ता ये बुराई करदा ही नहीं, ये सब परमेश्वर कबीर जी दी कृपा है। जो उस दिन ये सत्संग विच आ गया अते इसदी आत्मा दा मैल साफ हो गया। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 64। आप दा परिवार नरक तो कढ के स्वर्ग विच निवास कर रहा है। परमात्मा दी मर्यादा विच रहना कदी कष्ट नहीं आएगा, भगती करदे रहना कई पीढ़ी दा उदार हो जाएगा। इस प्रकार सत्संग नाल मानव उदार हो के विश्व विच शांति आपसी प्रेम वद्दा है। सत्संग विचार जरूर सुनिया करो। पढ़ो भगती मर्यादा पन्ना नंबर 287 उत्ते। माता पिता दी सेवा ते आदर करना परम कर्तव हरेक माता पिता दी तमन्ना हुंदी है कि मेरी संतान योग बन समाज बदनामी ना ले, चंगे चरित्र वाली होवे, आज्ञाकारी होवे, बिरध अवस्था विच साड़ी सेवा करे, साड़ी बहु साड़े कहने विच चलन वाली आए, समाज विच साड़ी इज्जत रखे, प्यार नाल व्यवहार करे, सतयोग तरेता द्वापर तक ए मर्यादा चरम उत्ते रही, सब सुखी जीवन जिउंदे सन। कलयुग विच कुछ समय तक ता ठीक रहा, परंतु वर्तमान विच स्थिति विपरीत ही है। लेखक यानी रामपाल दास इसनू सुधारण दा उद्देश रखदा है। आशा भी करदा हा कि भगवान दी कृपा नाल ज्ञान दे प्रकाश नाल सब संभव हो जांदा है, हो भी रहा है अते होएगा, ए मेरी आत्मा मनदी है। माता दा संतान दे प्रति प्यार। एक लड़के दा पिता मेरी तयू नू प्राप्त हो गया। उस समय ओ 10 जा 11 साल दा सी। माता ने अपने इकलौते पुत्र दी परवरिश कीती। माता अते पिता दोनों दा प्यार माता जी ने दिता कि किते पुत्र नू पिता दा अभाव कष्ट ना देवे। लड़का जवान हो के शराब दा आदि हो गया ते वैश्वा गमन करन लगा। माता तो रोज रुपए मंगे अते आवारागर्दी विच उड़ाए। एक दिन माता दे कोल पैसे नहीं सन। शराब दे नशे विच माता नू कुटिया ते वैश्वा दे कोल गया। उस दिन पैसे नहीं सन ता वैश्वा ने कहा कि अपनी माता दा दिल काढ़ लिया। उल्टा कर आया, माता बेहोश सी, छुरा मार के माता दा दिल काढ़ के चल पिया। नशे विच ठोकर लगी अते डिग गया। माता दे दिल तो आवाज आई कि बेटा तेनू सटता नहीं लगी। नशे नाल बनिया शैतान वैश्वा दे कोल माता दा दिल लैके पहुंचया। ता वैश्वा ने कहा कि जदो तू अपनी माता दा हितैषी नहीं है ता मेरा की होएगा, किसे दे बहकावे विच आके तू मैनू भी मार देवेंगा। मैं ता तेरे तो पिछा छुटवाउणा सी कि तू हुण निरतन हो गया है, मेरे किस कम दा। इस लई ए शरत रखी सी कि तू माता दा दिल कड नहीं सकदा, क्योंकि ओ तैनू कदी किसे चीज दे लई मना नहीं करदी सी। हे शैतान चलिया जा मेरिया अखा दे सामणेओ। ए कह के वैश्वा ने उस घर तो बाहर धक्का दे के दरवाजा बंद कर लिया। ओ शैतान घर आया, माता दे लाच उत्ते विलाप करन लगा। कहा कि माता जी हो सके ता भगवान दे दरबार विच मैनू भी बचाउणा। आवाज आई, बेटा कुछ नहीं होया, बस तेनू खुश देखना चाहुंदी हा। उस ही समय नगर दे लोक आए, थाने विच सूचना दित्ती। उस अपराधी नू राजा ने फांसी दी सजा दित्ती। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 65। राजा ने फांसी चढ़ाउण तो पहला उसकी अंतिम इच्छा जानी ता उस लड़के ने कहा कि कुछ नागरिका नू बुलाओ, मैं अपनी कारगुजारी नू सब दे नाल सांझा करना चाहुंदा हा। नगर दे व्यक्ति आ गए। उस लड़के ने अपना जुलम कबूलिया अते दस्या कि मैं उपरोक्त जुलम कीता, मेरी माँ दी आत्मा अंतिम समय विच वी मेरे सुखी रहन दी कामना करदी रही, मैनू नशे ने शैतान बना दिता, मैं वैश्वा गमन करके समाज नू दूषित कीता, आप लोग मेरे तो नसीहत लेना, जो कोर पाप मैं अपनी माता जी नू परेशान करके कीता कोई मत करना। माता जेही हमदर्द संसार विच पत्नी भी नहीं हो सकती, भले ही वो किन्नी ही नेक होव। माता अपने बेटे बेटी नू इन्ना प्यार करदी है कि सर्दिया विच बच्चा पेशाब कर दिंदा है ता माता खुद उस दे पेशाब नाल भिजे ठंडे बिस्तर उत्ते लेटदी है, बच्चे दे नीचे सुक्का विछौना कर दिंदी है। जेकर बच्चा भुख नाल रो रहा हुंदा है ता खाना विचाले छड के उसनू पहला अपना दुध पिला के शांत करदी है। पिता बच्चा दी हर संभव गलती मुआफ कर दिंदा है। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि पिता अपने पुत्र पुत्री दे सारे अपराध मुआफ कर दिंदा है। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो बौर पिता को लाज। शब्द अर्थ, परमात्मा सारे प्राणियां दा पिता है। पिता विच विशेषता हुंदी है कि उसदा बेटा बेटी अज्ञानता विच गलती कर दिंदे हन अते ओ पिता तो खिमा याचना कर लैंदे हन कि भविख विच कदे गलती नहीं करनगे ता पिता उहनां नू तुरंत माफ कर दिंदा है। इस लई भगत परमात्मा नू अर्ज करदा है कि हे दीन दयाल आप ता सब दे पिता हो, मेरे अवगुण यानी अपराध पिता होण दे नाते खिमा करना, मैं कपूत यानी निकम्मा पुत्र भी हाँ ता भी आप पिता दा कर्तव पालन करके खिमा करना। राम भगत दी पत्नी दा देहांत हो गया। उस समय उसका पुत्र 3 साल दा सी। उस व्यक्ति दी रिश्तेदारी विच एक घटना अजिही घटी सी जिसने उसनू चंजोड़ के रख दिता। कथा इस प्रकार है। उस दे मामा जी अपनी भैन यानी राम भगत दी माता जी तो लगभग 10 साल वड्डे सन। मामा जी दे 2 पुत्र सन। राम भगत दी मामी जी दा देहांत हो गया। मामा जी ने दूसरा व्याह कर लिया। दूसरी पत्नी नू पुत्र होया। दूसरी पत्नी पहले वाली दे पुत्रा नू ईरखा करन लगी। ए विचार कीता कि 15 एकड़ जमीन है, 3 जगह वंडी जाएगी। उसने उहना बच्चिया नू कच्च पीस के दुध ते खाने विच खिला पिला दिता, जिस नाल हौली हौली रोगी हो के मृत्यु हो गई। डाक्टर ने दस्या कि बच्चे कच्च खा गए हन, जिस कारण इहना दी मृत्यु हो गई है। एक दिन उसकी पत्नी पड़ोसन नू दस्या कि मैं इंज इंज कीता, मेरे बेटे नू 15 एकड़ जमीन मिल गई। उस स्त्री ने मेरे मामा जी नू दस्या। मामा जी छोटी मामी नू बहुत प्यार करदे सन अते उस उत्ते विश्वास करदे सन। उहना नू विश्वास नहीं हो रहा सी। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा, पन्ना नंबर 66। एक दिन छोटी मामी अपने भाई नू दस रही सी कि मैं ऐसा ऐसा कीता, तेरे पांजे नू 15 एकड़ जमीन मिल गई। ए गल मेरा मामा सुन रहा सी, क्योंकि वह खिड़की दे बाहर सुभाविक ही खड़ा सी। मामी दा भाई बोलिया, भैन तू जुलम कर दिता, इस पाप नू किथे रखेंगी, अज दे बाद मैं तेरी शकल देखन भी नहीं आऊंगा। मामा जी दा दिमाग फटन नू हो गया। घर त्याग के अपनी भैन दे घर आ गए। साडे यानी राम भगत दे घर उपर जीवन बतीत कीता। कुछ साल मगरों छोटी मामी तो जम्या पुत्र भी मर गया। ओ छोटी मामी किसे दे नाल पज गई। पता चलिया उस व्यक्ति ने उस दे गहने खो के मार के खूह विच पा दिता। पुलिस नू पता चलिया ता उस व्यक्ति नू फांसी लगाई गई। इस सर्वनाश महाभारत नू याद करके राम भगत ने दूसरा व्याह नहीं कीता। लड़के नू अपने नाल रखदा, हल जोतदा सी ता पुत्र नू कंधे उत्ते बैठा के रखदा सी। थक जांदा ता रुख दे नीचे लेटा दिंदा, खुद खाना बनाउंदा, खुद इशनान कराउंदा, कपड़े साफ करदा। जिवे जिवे लड़का जवान होया व्याह कर दिता। फिर भी सब काम खुद ही करदा सी। विरद अवस्था ने जोर दिता, काम कुछ नहीं कर पा रहा सी। पुत्र अब्दू नू बेअर्थ दा खर्च लगन लगा, जिस कारण अपने ससुर नू रुखा सुखा बासी भोजन देन लगी। फिर पेट पर भोजन भी नहीं दिंदी सी। लड़का पुछदा सी कि पिता जी सेवा ठीक हो रही है? पिता जी कहंदे, बेटा कोई कसर नहीं है, बहुत भागवान बहु आई है, मेरा विशेष ध्यान रखदी है। ए गल बहु भी सुनदी अते ज्यादा परेशान कर दी कि मेरे पति नू पता नहीं है, बिरद भी मेरी चाल तो अपरिचित है। एक दिन लड़के ने देखिया कि पिता जी नू भोजन ठीक नहीं मिलिया, ता उसने पत्नी नू कहा, ता पाखंड करन लगी कि घर देख के खाया जांदा है, आप नू घर दी चिंता नहीं है, सारा घर मेरे तो चल रहा है, मैनू पता है कि खर्च किवे चलाउणा है। एक दिन बिरद नू चक्कर आए अते गिर गया, टंग टुट गई। वैद ने दस्या कि आहार पूरा ना मिलन करके शरीरक कमजोरी है। दुध 2 समय अद्धा अद्धा सेर यानी किलो पिलाओ, ताजा भोजन खिलाओ। वैद चला गया। पत्नी ने कहा कि इस तरह तक घर दा दवाला निकल जाएगा। पति यानी लड़के नू भी गल पसंद आ गई। बिरद दी कोई परवाह नहीं कीती। बिरद दे ससुराल वाले 60 लगन दी खबर सुन के मिलन आए। उहना ने पुछया कि बेटा बहू ठीक सेवा कर रहे हन? राम भगत ने कहा कि पुछो ना, अजेहे पुत्र ते पुत्र वधू सब नू देवे भगवान, मैनू कोई कष्ट नहीं होण दिंदे, ए ता कोई करम दी मार नाल चोट लग गई है। उसे पिंड विच 2 भैणां दा व्याह होया सी, एक दा राम भगत नाल, दूसरी दा पड़ोस विच। जद ओ अपनी दूसरी लड़की दे घर गए ता पता चलिया कि उस राम भगत दी कोई सेवा नहीं हो रही है, लड़का भी निकम्मा है। ए गल ससुराल वालिया दे गले नहीं उतरी, क्योंकि ओ राम भगत दे मुखो सुन के आए सन कि सेवा विच कोई कसर नहीं है। ओ कुछ समय बाद दुबारा राम भगत दे घर गए ता उस समय ओ वासी रोटी पानी विच प्यो प्यो के खा रहा सी। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा, पन्ना नंबर 67। ए देख के पिता बच्चिया दी हर संभव गलती खिमा कर दिंदा है। ओहना नू रोना आ गया। लड़के नू बुलाया ते कहा कि तेनू शर्म नहीं आउंदी, पता है तेनू किवे पाल पोस के वड्डा कीता है, लड़के दी बहू भी आ गई। दोनों बोले कि असी ता इस तरह ही सेवा करांगे। राम भगत बोलिया कि आप जाओ, घर विच झगड़ा ना कराओ, मेरी किस्मत विच जो लिखिया है ओ मिल रहा है, मैं अपने पुत्तर नू दुखी नहीं देख सकदा। राम भगत दी बुआ दा लड़का रामनिवास सतसंगी सी। ओ राम भगत नू बहुत कहंदा सी कि आप कुछ समय भगवान भगती करया करो, मेरे नाल संत दे सत्संग सुनन चलिया करो। ता राम भगत नू बहुत कहंदा सी कि मैं ता अपने बेटे दी पूजा करूंगा, ए सुखी रहे यही मेरी तमन्ना है। बुआ दे लड़के ने कहा कि बेटे दी पूजा पूरी हो चुकी होवे ता हुण वी बना लै कुछ करम। फिर भी ये कहा कि बेटे बहू नू देख के जी रहा हां। बहुत कहन दे पिछो राम भगत अपनी बुआ दे लड़के रामनिवास नाल सत्संग विच गया, फिर महीने अपने कोल रखिया। राम भगत भगती उत्ते पूरा दृढ़ हो गया। घर गया ता बच्चियां नू कहा कि बेटा बेटी यानी पुत्रबदू, अज तक मैं आप तो कुछ नहीं मंगया, अज एक भीख मंग रहा हा, आप मेरे नाल सत्संग विच एक वार चलो। उहना ने कहा कि पिछे तो पशुआ ते बच्चिया नू कौन संभालेगा। राम भगत ने कहा कि बेटा घर रह जाएगा, बेटी ते पोता पोती मेरे नाल चलो। अजिहा ही कीता। जद उस पुत्र वधू ने सत्संग सुने, उत्थे आउण वाले सब भगता दी सेवा, पुराने भगत भगत मती अजिहे कर रहे सन जिवे विशेष मेहमाना दी कर करदे हन। बिरध रोगी अपंग शरदालुआ दी वी विशेष सेवा कर रहे सन। सत्संग विच ए दस्या जांदा है कि जीव उत्ते दया बनाए रखण नाल परमात्मा प्रसन्न हुंदा है। दुखिया असहाय दी सहायता करना मानव मातर दा परम कर्तव्य है। दिया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, केह कबीर दयावान दे पास रहे भगवान। शब्द अर्थ, धर्म ओ ही करदा है जिस दे दिल विच दया है। दया धर्म दी जड़ है अते पाप ओ करदा है जिस विच अभिमान भरिया है। अभिमान पाप दी जड़ है। कबीर परमात्मा ने कहा है कि दयावान दे नाल परमात्मा रहिंदा है, अभिमानी दे नाल नहीं रहिंदा। भगत राम भगत दी पुत्र वधू जिस भगत मती दे कोल बैठी सी, ओ बोली कि पैण आप भी कुछ सेवा कर लो। सत्संग वचन, गुरु जी दसदे हन कि जो सेवा भगती करेगा उसनू फल मिलेगा। मैं भोजन खाऊंगा ता मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे ता आपदा पेट भरेगा। सब प्राणी परमात्मा दे बच्चे हन, आप तनी दे बच्चे समझ के सेवा करो। जिवे एक तनी दी लड़की 8-9 साल दी सी, उस दी देख रेख दे लई एक नौकरानी रखी सी। ओ उस लड़की नू गर्मिया विच स्कूल छड़न जांदी सी, ता उस लड़की दे उपर छाते यानी छत्री नाल छा करके चलदी सी, खुद धुप सहन करदी सी जिस नाल तनी खुश रहिंदा सी अते नौकरानी नू तनखा दिंदा सी। आप सब ए विचार करके अपने परायां दा ध्यान रखो। आप जी सुन रहे हो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 88। सस सोहरे दी सेवा, छोटे वड्डे दी सेवा, सब दा सम्मान करना आप जी दा परम कर्तव्य है। जेकर आप अपने सस सोहरे माता पिता जा होर आश्रिता दी सेवा करोगे ता परमात्मा आप दी सेवा दा प्रबंध करेगा। आप अपने छोटे छोटे बच्चिया नू वी सत्संग विच नाल लियाया करो। बच्चिया विच वी छोटे वड्डे दी सेवा करन, चंगा व्यवहार करन दे संस्कार पैणगे। ओ बच्चे वड्डे हो के आप दी यानी बिरध हो जाओगे, फिर वी सेवा ऐसे ही करनगे। जिवे बेटी एक बाप मां नू छड के नवे माता यानी सस ते पिता यानी ससुर दे कोल आउंदी है। हुण जन्म दे माता पिता ता इन्ने ही साथी सन, उहना ने पाल पोस के नवे माता पिता नू सौंप दिता। सस सोहरे दा कर्तव्य है कि आउण वाली बेटी नू अपनी बेटी दी तरह प्यार देवे। भेद भाव सुपने विच वी नवी बेटी ते अपनी जन्म दी बेटी विच ना करो। जो झगड़े दी जड़ है, पुत्तर वधू नू चाहिदा है कि नवे घर दीआं परिस्थितियां दे अनुसार अपने आप नू टाले। मां दे घर वाले वर्ताओ नू घट प्रयोग करे। हुण पुत्तर वधू दा घर परिवार ही यानी ससुराल है। सिख्या कथा, एक पुत्तर वधू अपनी सस नू बहुत दुखी रखदी सी। उसनू फुटे हुए मिट्टी दे घड़े दे टुकड़े यानी ठीकरे विच भोजन खिलाउंदी सी, जिवे कुत्तिया नू खिलाउंदे हन, कदी कदी साफ करदी सी। उस दे लड़के दा व्याह होया, कुछ समय उपरंत सस दी मिरी तो हो गई। फिर ओ अपनी पुत्तर वधू नू बोली कि इस ठीकरे नू फोड़ के बाहर सुट दियो। ओ पुत्तर वधू बोली कि सस जी आप नू वी इसे ठीकरे विच भोजन दिया करूंगी, अपने बहुत जुलम बिरदा दे नाल कीते हन। फिर ओ अपनी गलती नू समझ के बहुत रोई। ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋੜਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿਲਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਸੂ ਮਾਂ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਪਾਉਂਗੀ। ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੜਕੀ ਸਤਸੰਗੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਸ਼ਟ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕ ਪਾਪ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਪ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸਵਾਂਸ ਤੱਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸਤਰ ਘੱਟ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਯਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਧਿਕ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਅਧਿਕ ਮੈਲਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਗ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵਸਤਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 69। ਲੜਕੀ ਯਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਬਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੀੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟਾ ਤੋਂ ਕੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਪਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦੀ, ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੀ, ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਕੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਦੂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਗਤ ਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਕੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਬਕੀ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਉਲੇਖ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੁਹਰਾ ਜੀ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਹੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੌਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਪਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ 2-3 ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 3 ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਭਗਤ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਲਟਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਾ ਉਠਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਆਊਂਗਾ। ਬੱਚੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਮੰਡਲ 10:161 ਮੰਤਰ 2 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਗੀ ਮਰੀਤੋ ਦੇ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਮਰੀਤਯੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਉਸਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਰਕੇ 100% ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਬਦੂ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਧੋਤੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਊਂਗੀ। राम भगत जी ने कहा कि बेटी आप नू घर दा बहुत कम करना हुंदा है, खाना बनाउणा, पानी लियाउणा, पशु संभलना है। मैं आप तो लऊंगा, मेरी टंग भी हुण ठीक हो गई है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 70। बस थोड़ा जेहा लंघ रहिंदा है, राम भगत इशनान करके धोती बदल के धोती धोण लगा। उसी समय बच्चिया ने आके धोती खोह लई अते लै के अंदर भज गए अते अपनी माता जी नू दे दित्ती। फिर कुरता भी लै गए, दूसरा कुरता लिया के दे दित्ता। लड़का खेत तो पशुआ दा चारा लै के आया अते पहला दी तरह पिता नू देख्या अते बिना बोले अगे घर विच चलिया गया। पत्नी निर्मला हलवा बना रही सी, उसने सोचिया कोई त्योहार होएगा, फिर सब्जी रोटी बनाई। सब तो पहला गुरु भगवान नू दो कटोरिया विच भोग लगाया ते फिर एक थाल विच रोटी, कटोरिया विच हलवा ते सब्जी पाके अपने ससुर जी दे कोल लेके गई अते बोली, पिता जी भोजन खा लो, भुख लगी होएगी, दूर तो आए हन। राम भगत बोलिया, बेटी मैनू ए हजम नहीं हुंदा, सुखी रोटियां लिया देवो, मैं बीमार हो जाऊंगा। राम भगत जी ने सोचिया सी कि भावना विच वह के बेटी अज ता सब सेवा कर देवेगी, परंतु लड़का इसनू धमकाएगा क्योंकि उसनू सत्संग दा ज्ञान नहीं है, किते घर विच झगड़ा ना हो जाए। इन्ने विच लड़का भी आ गया, अपनी पत्नी नू बोलिया, पिता जी ठीक कह रहे हन, लै चल अंदर। पिता दा कमरा गली उत्ते सी, बच्चिया दा रहण दा अंदर नू सी। पत्नी बोली, चुप रहो, मैं बहुत पाप इकट्ठे कर लए, हुण पिता जी दी सेवा मैं खुद करूंगी। लड़का चुप हो गया। राम भगत ने दोनों पोतिया नू थोड़ा थोड़ा हलवा दिता, पुत्र वधू नू देण लग्या ता बोली कि आप की खाओगे, घर होर भी बहुत सारा हलवा प्रसाद बचया है, पिता जी आप खाओ, नहीं खाओगे ता मेरी आत्मा रोएगी। भगत राम भगत जी ने गुरुदेव भगवान दा सिमरन कीता अते भोजन खादा। प्रतिदिन पुत्र वधू खुद नरम नरम रोटिया गरम गरम लिया के अपने हथी खिलाउंदी, प्रतिदिन कपड़े साफ करे अते कहे, पिता जी भजन कर लो। एक दिन राम भगत जी दी बुआ दा लड़का भगत राम निवास आया। राम भगत जी ने उसनू सीने नाल लगा लिया अते बोलिया, रे भाई, साडा घर ता तेरी कृपा नाल स्वर्ग बन गया। भगत रामनिवास बोलिया के मामा दे बेटे रामनिवास तो कुछ ना होया, गुरुदेव जी दी शब्द शक्ति दा करिश्मा है, आप अते मैं ता पहला इकट्ठे ना बत्ती डंडा खेलिया कर दे, मेरे करन नाल हुंदा ता पहला ही हो जांदा। गुरु जी कह रहे सन कि राम भगत पिछले जन्मा विच भगत सी, इस नाल घर दे मोह दे कारण मर्यादा विच भुल बनी सी, उस दे कारण इन्ना कष्ट सहन किता है, हुण इह महान दुखी हो चुका सी, हुण तेरे नाल आया है। नहीं ता आप किन्नी वार राम भगत तो पहला कह चुके सी कि सत्संग चल, परंतु मोह माया विच अन्ना हो चुका सी। एह कष्ट होर पुत्र पुत्र वधू दा व्यवहार इस दे लई वरदान बन गया है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख दे, जो पल पल राम रटाए। भाव अर्थ, हे परमात्मा इन्ना सुख भी ना देना जिस नाल तेरी भुल पए, जिस दुख तो परमात्मा दी पल पल याद बनी रहे, वैसे दुख सदा दिंदे रहना। मैं बलिहारी जावा उस दुख नू जिस दे कारण परमात्मा दी शरण मिली। भगत राम भगत जी ने भगत राम निवास जी नू कहा कि हुण दे सत्संग विच बेटे प्रेम सिंह नू लै जाना, इस दा उदार हो जाएगा। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 71। अगले सत्संग विच जो एक महीने बाद होना सी, भगत राम निवास जी आए अते प्रेम सिंह नू अपने घर लै जाण दे बहाने लै गए। घर तो सत्संग विच लै गए, तीन दिन तक आश्रम विच रहे, सत्संग सुनिया, होर पुराने भगता तो उहना दी आप बीती सुनी ता सत्संग दे रंग विच रंग गया। भगत राम भगत जी दा परिवार एक दम बदल गया, भगती सेवा करके कल्याण नू प्राप्त होया। सत्संग नाल घर दी कलेश समाप्त हुंदी है। एक माई अपनी पुत्र बदू उत्ते गल गल उपर क्रोध करदी सी, छोटिया छोटिया गलतियां नू वदा चढ़ा के अपने पुत्र नू कहंदी। पुत्र अपनी पत्नी नू धमकाउंदा, इस प्रकार घर नरक बनिया होया सी। पुत्र बदू अपनी सासू मां नू कदी कदी कहंदी सी, आप सत्संग जाया करो, अपनी पड़ोसन भी जांदी है। सासू मां बोली कि सत्संग विच ऐरिया गैरिया यानी बदचलन स्त्रियां जांदियां हन, जिन्हां दा संसार विच सतिकार नहीं हुंदा, जो चंगे कूल दिया नहीं हन, असी खानदानी हाँ, साडा की कम सत्संग विच। इस तरह पुत्र बदु ने कई बार कोशिश की परंतु माई मनण नू तैयार नहीं हुंदी। एक दिन पिंड दी स्त्री किसे काम वश उहना दे घर आई ता सस अपनी पुत्र बदु नू गाला दे रही सी, क्या उन दे तेरे खसम नू अज तेरी खल उतरवाऊंगी। गल की सी कि गिलास विच चाह रखी सी सस दे लई पाके। पुत्र बदु बच्चे नू लैण अंदर चली गई सी, जो सुत्ता सी जागण ते रो रहा सी। उस बच्चे नू उठा के लियाउण विच एक मिंट भी नहीं लगी सी कि इसे विच कुत्ता आया अते चाह दे गिलास विच जीब मारन लगा। गिलास गिर गया, चाह पृथ्वी उत्ते बिखर गई। सासू मां आंगण विच उस गिलास तो मात्र 20 फुट दी दूरी उत्ते पई चार पाई उत्ते बैठी सी। हट्टी कट्टी सी, खेता विच सैर करके आउंदी सी परंतु कम नू हाथ नहीं लगाउंदी सी। इसी गल उत्ते कलेश कर रही सी। पिंड दे दूसरे महल्ले तो आई माई सत्संग विच जांदी सी। सारी गल सुन के उसने पतेरी यानी उस सस दा नाम पतेरी सी नू कहा कि आप सत्संग चल्या करो। उस सत्संग वाली भगत मती ने बहुत देर सत्संग विच सुनिया गल्ला दसिया परंतु पतेरी मनन नू तैयार नहीं सी। पतेरी दी दूसरी भैन उसी महल्ले विच व्याह रखी सी। जिस मोहल्ले दी ओ सत्संग वाली माई जानकी सी, पतेरी दी भैन दा नाम दया कौर सी। जानकी ने जाके दया कौर नू दस्या कि तेरी भैन ने ता घर नरक बना रख्या है, बिना गल दी लड़ाई कर दी है। मैं कल किसे कम वस गई सी, एक चाह दा गिलास कुत्ते ने डिग्गा दिता, उस दा महाभारत बना रख्या सी। दया कौर भी जानकी दे कहन उत्ते सत्संग सुनन गई सी अते दिख्या लै लई सी। जानकी ने कहा कि उसनू जैसे तैसे एक वार सत्संग विच लै चल, जद तक संता दे विचार सुनन नू नहीं मिलदे ता व्यक्ति बेअर्थ दिया टेंशन यानी चिंता खुद रखदा है ते घर दे मैंबरां नू भी चिंता विच रखदा है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 72। दया कौर अगले दिन अपनी भैन दे घर गई, किसे बहाने पतेरी नू अपने घर लै गई। उत्थो कई होर औरता सत्संग विच जान दे लई जानकी दे घर अगे खड़िया सन। उत्थो उस दी भैन पतेरी नू देख के उसनू भी कह सुन के नाल लै गई। पतेरी ने जीवन विच प्रथम वार सत्संग सुनिया। आश्रम विच किवे स्त्री पुरुष रहंदे हन सब अखी देख्या ता चंगा लग्या। जिहड़ा अनाब शनाब सुनिया करदी सी वैसा आश्रम विच किते देखण नू नहीं मिलिया। सत्संग विच दस्या कि कई व्यक्ति अपनिया पैन बेटिया बहुआ अते होर स्त्रियां नू सत्संग नहीं बेचदे अते ना खुद जांदे हन। ओ कहंदे हन कि साडे सत्संग विच जाण नाल घर दी इज्जत दा नाश हो जाएगा, साडिया बहु बेटिया बदनाम हो जाणगियां। उन्हां नू विचार करना चाहीदा है कि सत्संग विच ना आउण नाल परमात्मा दे विधान दा ज्ञान नहीं हुंदा, कि भगती ना करन वाले स्त्री पुरुष अगले जीवन विच महान कष्ट भोगदे हन। सूक्ष्म वेद विच दस्या है कि जो मनुख शरीर प्राप्त करके भगती नहीं करदे उहना नू की हानि हुंदी है। कबीर, हर के नाम बिना नार कुतिया होए, गली गली पौंकत फिरे टूक ना डाले कोय। संत गरीब दास जी दी बाणी तो बीबी पढ़दे रहे थी ड्योडी लगती बाहर, अब गात उगाड़े फिरती है बण कुतिया बाजार। वे पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती है करे सरायो शोर। नक बेसर नक पर बने पहरे थी हार हुमेल, सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। पावरथ, मनुख जीवन प्राप्त प्राणी जेकर भगती नहीं करदा है ता ओ मृत्यु दे उपरंत पशु पंछिया अध्यादि दिया जूनिया प्राप्त करदा है। परमात्मा दे नाम जाप बिना इस्त्रिया अगले जन्म विच कुतिया दा जीवन प्राप्त कर दिया हन, फिर निर्वस्त्र हो के नंगे शरीर गलिया विच भटकदी रहंदी है, भुख नाल बेहाल हुंदी है, उसनू कोई रोटी दा टुकड़ा भी नहीं पाउंदा। जिस समय वो आत्मा स्त्री रूप विच किसे राजा राणा ते उच्च अधिकारी दिया बीविया यानी पत्निया सी, ओ उस दे पूर्व जन्मा दे पुन्ना दा फल सी। जो कदी किसे जन्म विच भगती धर्म आदि कीता सी ओ सर्व भगती ते पुन स्त्री रूप विच प्राप्त कर लई। ओ आत्मा वा उच्च कराणिया दिया बहु बेटियां सी, फिर पर्दिया विच रहंदिया सी, काजू किशमिश पा के हलवा ते खीर खांदियां सन। उहना दा जूठा छड्या होया नौकराणियां खांदियां सी। उहना नू सत्संग विच नहीं जान दिता जांदा सी क्योंकि ओ उच्च कराणिया दियां बहुआ ते बेटियां सी। घर तो बाहर जान नाल बेइज्जती मनदी सी, वड्डे घरां दी इज्जत इसे विच मन्नी जांदी सी कि बहु बेटिया दा परदे विच रहना उचित है। इहना कारना करके ओ पुन्नात्मा सत्संग विचार ना सुनन दे कारण भगती तो वांझिया रह जांदी सी। ਉਸ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ 9-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਰ ਹਮੇਲ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।